एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसने कह सकते हैं कि दुनिया का नक्शा बदलने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई।
हाँ, एक कहानी जो जासूसी, कूटनीति और एक बहुत बड़ी भूल के आसपास घूमती है।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं बारबरा टकमैन की मशहूर किताब द ज़िमरमैन टेलीग्राम की।
हाँ, और ये सिर्फ एक टेलीग्राम की कहानी नहीं है, ये दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा मतलब एक सीक्रेट मैसेज ने अमेरिका जैसे बड़े देश को पहले विश्व युद्ध में धकेल दिया।
और कमाल की बात ये है कि ये 100 साल पुरानी कहानी आज भी उतनी ही रेलेवेंट है ना?
सही कहा, आज हम जिस दौर में हैं, सूचना, जासूसी, गलत जानकारी।
हाँ, ये किताब बिल्कुल दिखाती है कि कैसे एक जरा सी चूक या कोई गलत अंदाजा या फिर कोई लीक हुई जानकारी पूरा इतिहास बदल सकती है।
बिल्कुल, तो चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है।
जरूर, लेकिन पहले लेखिका के बारे में थोड़ी बात हो जाए। बारबरा टुकमैन।
हाँ, बारबरा डब्ल्यू टुकमैन एक असाधारण अमेरिकी इतिहासकार थी वो, और दिलचस्प बात यह कि उन्होंने क्या कहते हैं कोई फॉर्मल पीएचडी नहीं की थी इतिहास में।
अरे वाह, ये तो बड़ी बात है, फिर भी दो दो पुलित्सर पुरस्कार।
हाँ, यही तो कमाल है। उनकी खासियत ये थी कि वो मुश्किल से मुश्किल ऐतिहासिक घटनाओं को भी एक कहानी की तरह पेश करती थी।
अच्छा, कैसे?
मतलब किरदारों के साथ, उनके इरादे, उनकी फीलिंग्स, ऐसा लगता था जैसे कोई नॉवल पढ़ रहे हो, ना कि कोई सूखी इतिहास की किताब।
मतलब इतिहास को दिलचस्प बना दिया उन्होंने।
हाँ बिल्कुल, और इस खास टॉपिक पर ज़िमरमैन टेलीग्राम पर उनकी पकड़ इसलिए भी मजबूत थी क्योंकि उनकी एक और किताब थी द गन्स ऑफ ऑगस्ट।
हाँ, सुना है उसके बारे में, वो भी पहले विश्व युद्ध पर थी।
जी बिल्कुल, वो भी पहले विश्व युद्ध की शुरुआत पर ही थी और उसे भी पुलित्ज़र मिला था, तो वो उस जमाने की पॉलिटिक्स, लोगों की सोच, माहौल, इन सब को बहुत गहराई से समझती थी।
अच्छा,
उनका मानना था कि इतिहास सिर्फ बड़ी ताकतों का खेल नहीं है, अक्सर ये लोगों के फैसलों, उनकी गलतियों, हाँ, और उनकी पर्सनैलिटी से बनता है।
और ज़िमरमैन टेलीग्राम की कहानी तो इसका एक बेहतरीन उदाहरण लगती है ना?
एकदम सही, कैसे एक आदमी का अहंकार या शायद जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास इतना बड़ा असर डाल सकता है। तुकमैन इतिहास को मानवीय चेहरा देती हैं।
तो अब आते हैं किताब पर। ये किताब आखिर है किस बारे में, मतलब संक्षेप में?
आसान शब्दों में कहूं तो ये 20वीं सदी की सबसे बड़ी खुफिया जीतों में से एक की पूरी कहानी है। सिर्फ ये नहीं कि टेलीग्राम में लिखा क्या था,
अच्छा,
बल्कि वो बना कैसे, भेजा कैसे गया, फिर पकड़ा कैसे गया, और फिर उसका असर क्या हुआ धमाका, ये पूरी चेन है।
तो किताब का मेन पॉइंट ये है कि अमेरिका सिर्फ इसलिए युद्ध में नहीं आया कि जर्मनी पनडुब्बियों से जहाज डुबो रहा था।
हाँ देखिए, वो एक बड़ा कारण जरूर था, लेकिन असली ट्रिगर वो ज़िमरमैन टेलीग्राम था जब वो सामने आया,
जिसमें जर्मनी मेक्सिको को कह रहा था कि तुम अमेरिका से लड़ो, हम तुम्हें तुम्हारी पुरानी जमीन वापस दिलाएंगे, टेक्सास, न्यू मेक्सिको, एरिजोना।
सोचिए जरा, ये तो अमेरिका की इज्जत पर, उसकी जमीन पर सीधा हमला था एक तरह से, जर्मनी का दोहरापन साफ दिख गया।
हाँ, इसने अमेरिकी जनता और सरकार दोनों को बुरी तरह झकझोर दिया होगा
और युद्ध में जाना लगभग तय हो गया। तो किताब हमें एक सफर पर ले जाती है, पहले जर्मनी,
जहाँ वो लोग परेशान हैं, हताश हैं।
हाँ, ब्रिटिश नाकेबंदी से घिरे हुए, फिर ब्रिटेन, जहाँ रूम 40 के कोड ब्रेकर्स इसे डीकोड करते हैं,
वो खुफिया एजेंसी।
जी, और आखिर में वॉशिंगटन डीसी, जहाँ ये खबर पहुँचती है और आग लगा देती है।
तो ये तीन कड़ियाँ, जर्मन हताशा, ब्रिटिश चालाकी और अमेरिकी जनमत का बदलना,
हाँ, इन तीनों ने मिलकर पहले विश्व युद्ध का नतीजा तय किया और शायद पूरी 20वीं सदी का भी।
चलिए अब कहानी के अंदर थोड़ा और गहरे चलते हैं। शुरुआत कैसे होती है?
कहानी शुरू होती है 1916 के आखिर और 1917 की शुरुआत में। पहला विश्व युद्ध चल रहा है, वेस्टर्न फ्रंट पे लड़ाई एक तरह से रुकी हुई है, कोई नतीजा नहीं निकल रहा,
और जर्मनी परेशान है
बहुत ज्यादा। ब्रिटिश नेवी ने नाकेबंदी कर रखी है, उनकी इकोनॉमी मुश्किल में है, और सरकार में जबरदस्त बहस चल रही है।
किस बात पर?
कि क्या करें, चांसलर जैसे लोग हैं जो डर रहे हैं कि अमेरिका को नाराज न कर दें, लेकिन हिंडनबर्ग और लुडेंडॉर्फ जैसे मिलिट्री लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि जीत का एक ही रास्ता है, अप्रतिबंधित पनडुब्बी युद्ध।
अप्रतिबंधित पनडुब्बी युद्ध, इसका मतलब क्या था? ठीक ठीक,
इसका मतलब था कि जर्मनी की पनडुब्बियां किसी भी जहाज को, दुश्मन का हो, न्यूट्रल देश का हो, पैसेंजर जहाज हो, बिना वार्निंग डुबो देंगी।
अरे बाप रे।
हाँ, उन्हें लगा कि ऐसे वो ब्रिटेन की सप्लाई लाइन काट देंगे और उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, और ये सब वो अमेरिका के युद्ध में पूरी तरह उतरने से पहले करना चाहते थे। ये एक बहुत बहुत बड़ा जुआ था।
और यही एंट्री होती है आर्थर जिमरमैन की।
बिल्कुल, जर्मनी के नए विदेश सचिव, बड़े एम्बिशियस और पनडुब्बी युद्ध के जबरदस्त समर्थक, वो इस जुए को और बड़ा बनाते हैं
मेक्सिको को शामिल करके।
हाँ, उनका आइडिया था कि अगर अमेरिका युद्ध में आता है तो मेक्सिको को अपनी तरफ कर लो, उसे अमेरिकी जमीन का लालच दो, टेक्सस, न्यू मेक्सिको, एरिजोना,
ताकि अमेरिका यूरोप में दखल न दे पाए, अपनी ही मसलों में उलझा रहे।
एग्जैक्टली, इसी सोच से वो टेलीग्राम तैयार हुआ। 16 जनवरी 1917 कोड किया गया।
और सबसे मजेदार बात, या कहें विडंबना,
हाँ, कि उनके अपने अटलांटिक केबल तो कटे हुए थे, तो ये सुपर सीक्रेट मैसेज भेजने के लिए उन्हें अमेरिकी डिप्लोमेटिक चैनलों का इस्तेमाल करना पड़ा।
मतलब अमेरिका के ही सिस्टम से अमेरिका के खिलाफ साजिश, अविश्वसनीय
है ना। अब कहानी पहुंचती है ब्रिटेन, खासकर रूम 40, ब्रिटिश नेवी का सीक्रेट कोड ब्रेकिंग सेंटर।
अच्छा, तो अंग्रेजों को पता कैसे चला?
देखिए, अंग्रेज पहले से ही जर्मन कम्युनिकेशंस पर नजर रखे हुए थे, इंटरसेप्ट कर रहे थे, तो जैसे ही ये टेलीग्राम भेजा गया उन्होंने इसे पकड़ लिया।
पकड़ लिया, लेकिन कोड तोड़ना तो मुश्किल रहा होगा।
बहुत मुश्किल। जर्मन डिप्लोमेटिक कोड कोड 0075 काफी तगड़ा था, लेकिन रूम 40 के लोग निगल डी ग्रे और विलियम मोंटगोमरी लगे रहे। धीरे धीरे उन्होंने इसे तोड़ ही लिया।
और जब कोड टूटा तो क्या मिला?
वही बम, जर्मनी का मेक्सिको को ऑफर, हमारे साथ आओ, अमेरिका से लड़ो और अपनी हारी हुई जमीन वापस पाओ।
ओह, एडमिरल हॉल के हाथ तो जैसे जैकपॉट लग रहा था।
हाँ, पर इसे इस्तेमाल कैसे करें, ये बड़ी पहेली थी।
क्यों, क्या दिक्कत थी?
दो बड़ी दिक्कतें थीं। पहली, अगर वो सीधे अमेरिकियों को बताते तो जर्मन समझ जाते कि उनका कोड टूट गया है, वो फौरन कोड बदल देते, अंग्रेजों का एक बड़ा खुफिया हथियार बेकार हो जाता।
सही बात है। और दूसरी?
दूसरी ये कि अमेरिका में जर्मनी के समर्थक भी थे, ब्रिटेन के विरोधी भी थे। हो सकता है वो लोग कहते कि ये सब अंग्रेजों की चाल है, हमें युद्ध में घसीटने के लिए बनाया गया नकली टेलीग्राम है।
हाँ, ये भी हो सकता था। तो हॉल ने क्या किया, दिमाग लगाया होगा कुछ?
जबरदस्त दिमाग लगाया। यहीं पर उनकी चालाकी दिखती है। उन्हें पता चला कि इसी टेलीग्राम का एक और वर्जन, थोड़े पुराने, कम सिक्योर कोड में, वॉशिंगटन से मेक्सिको सिटी में जर्मन दूतावास को भी भेजा गया था।
अच्छा।
हाँ, तो उन्होंने मेक्सिको में अपने एजेंट्स के जरिए उस कॉपी को चोरी करवाने का इंतजाम किया, एक कवर स्टोरी बनाई,
ताकि लगे कि ये जानकारी जासूसी से मिली है, कोड ब्रेकिंग से नहीं। वाह,
बिल्कुल, इससे कोड ब्रेकिंग का राज भी महफूज रहा और अमेरिकियों को यकीन दिलाना भी आसान हो गया। फिर हॉल सही वक्त का इंतजार करने लगे।
और वो सही वक्त कब आया?
23 फरवरी 1917। ब्रिटिश विदेश सचिव आर्थर बेलफोर ने लंदन में अमेरिकी राजदूत वॉल्टर पेज को आखिरकार वो टेलीग्राम सौंप दिया।
खबर वॉशिंगटन पहुंची होगी, राष्ट्रपति विल्सन तक। उनका क्या रिएक्शन था? वो तो शांति की बात ही कर रहे थे अब तक।
हाँ, वो तो बिना जीत के शांति की कोशिश कर रहे थे। वो एकदम सन्न रह गए। शुरू में शायद थोड़ा शक भी हुआ होगा, लेकिन अमेरिकी एजेंसी ने जल्दी ही कन्फर्म कर दिया कि टेलीग्राम असली है। अब विल्सन के सामने बड़ा धर्म संकट था। जर्मनी ने पनडुब्बी युद्ध फिर शुरू कर दिया था, डिप्लोमेटिक रिश्ते टूट चुके थे,
लेकिन देश अभी भी युद्ध के मूड में नहीं था।
बिल्कुल, पर इस टेलीग्राम ने सब बदल दिया। ये अब दूर यूरोप का मसला नहीं था, ये अमेरिका के अपने घर पर, उसकी जमीन पर खतरा था,
सीधा खतरा।
तो विल्सन ने क्या फैसला लिया?
उन्होंने इसे पब्लिक करने का फैसला किया। 1 मार्च 1917 को जिमरमैन टेलीग्राम की खबर अमेरिकी अखबारों की हेडलाइन बन गई।
और फिर तो हंगामा मच गया होगा, जबरदस्त। पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। जो लोग कह रहे थे कि अमेरिका को अलग रहना चाहिए, उनकी आवाजें एकदम दब गईं। जर्मनी के लिए जो थोड़ी बहुत सहानुभूति थी, वो रातों रात नफरत में बदल गई। अखबार जो कल तक शांति की बात कर रहे थे, वो युद्ध की बातें करने लगे।
लेकिन क्या सबने मान लिया, या अभी भी कुछ शक था?
नहीं, अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। अब भी कुछ लोग थे, खासकर जर्मनी के समर्थक, जो कह रहे थे कि ये अंग्रेजों की जालसाजी है। मामला थोड़ा फंसा हुआ था।
फिर आखिरी कील कैसे ठोकी?
वो कील ठोकी बर्लिन से, खुद जिमरमैन ने ठोकी 3 मार्च को, जिसे टकमैन अविश्वसनीय अहंकार और बेवकूफी भरा कदम कहती हैं।
हाँ, क्या किया जिमरमैन ने?
उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मान लिया, हाँ, मान लिया कि उन्होंने ही ये टेलीग्राम भेजा था।
क्या, खुद ही कबूल कर लिया?
हाँ, और उसे डिफेंड करने की कोशिश की, कहा कि ये तो बस एक प्लान था जो तभी लागू होता अगर अमेरिका पहले जर्मनी पर हमला करता।
अरे, ये तो मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली उन्होंने।
बिल्कुल, इस कबूलनामे ने सारे शक, सारे सवाल खत्म कर दिए। अब किसी को कोई डाउट नहीं रहा, यह अमेरिकी न्यूट्रलिटी के ताबूत में आखिरी कील थी।
इसके बाद तो अमेरिका का युद्ध में जाना बस समय की बात रह गई होगी।
हाँ, इस टेलीग्राम ने विल्सन को वो साफ और सीधी वजह दे दी जिसकी उन्हें कांग्रेस और जनता को युद्ध के लिए राजी करने के लिए जरूरत थी। इसने अमेरिकी लोगों को एकजुट कर दिया। पनडुब्बी हमलों पर जो गुस्सा था वो अब जर्मनी की साजिश पर भयंकर गुस्से में बदल गया
और फिर अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया।
2 अप्रैल 1917 को विल्सन ने कांग्रेस के सामने युद्ध की घोषणा का अनुरोध किया। अपने मशहूर भाषण में कहा कि दुनिया को लोकतंत्र के लिए सुरक्षित बनाया जाना चाहिए। कुछ ही दिन बाद अमेरिका पहले विश्व युद्ध में शामिल था और जैसा टकमैन दिखाती हैं, इस एक टेलीग्राम ने, एक सीक्रेट मैसेज ने दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया।
वाकई एक अविश्वसनीय कहानी है। इससे जो सबक मिलते हैं वो भी बहुत गहरे हैं। पहला तो यही कि अहंकार और गलत अनुमान कितने खतरनाक हो सकते हैं।
बिल्कुल,
जर्मनी ने ब्रिटिश इंटेलिजेंस को कम आंका, अमेरिकियों की सोच को गलत समझा, मेक्सिको की असलियत को नहीं पहचाना। वो बस वही मान रहे थे जो वो मानना चाहते थे।
हाँ, कि अमेरिका कमजोर है, बटा हुआ है, मेक्सिको साथ आ जाएगा।
ये दिखाता है कि अपनी ही सोच में फंसे रहना कितना भारी पड़ सकता है।
हाँ।
अरे हाँ, ये तो ऐसी है जैसे हम भी कभी कभी मान लेते हैं कि सामने वाला वैसा ही सोचेगा जैसा हम सोच रहे हैं।
सही बात।
दूसरा बड़ा सबक है इंटेलिजेंस की ताकत।
हाँ, वो खुफिया जानकारी।
ये किताब दिखाती है कि कोड ब्रेकर और जासूसों का काम कितना अहम हो सकता है।
हाँ।
रूम 40 ने वो जानकारी दी जिसने अमेरिका जैसी महाशक्ति को युद्ध में खींच लिया।
हाँ।
आज के डिजिटल युग में तो ये और भी ज्यादा सच है।
हाँ।
साइबर वॉफे के जमाने में।
तीसरा,
वो पुरानी कूटनीति और नई तकनीक का टकराव। ये भी दिलचस्प है।
टेलीग्राम का कंटेंट, वो गुप्त समझौते, जमीन का लालच, ये सब पुरानी यूरोपियन रियल पॉलिटिक जैसा था, ताकत का खेल।
लेकिन उससे भेजा गया टेलीग्राफ से, पकड़ा गया इलेक्ट्रॉनिक जासूसी से, एकदम मॉडर्न। ये पुरानी सोच और नई तकनीक का तनाव तो आज भी बहुत जगह दिखता है ना?
बिल्कुल। चौथा, टकमिन कहती है कि अमेरिका का युद्ध में आना कोई पत्थर की लकीर नहीं था।
अच्छा, मतलब ये टाला जा सकता था।
शायद तनाव जरूर था, लेकिन जिमरमैन टेलीग्राम वो चिंगारी थी जिसने आग भड़का दी। ये गलती थी जिसे शायद टाला जा सकता था और इसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। मतलब छोटी चीजें भी बड़ा फर्क डाल सकती हैं।
और पांचवा सबक, लोकतंत्र में पब्लिक ओपिनियन की ताकत।
हाँ, ये बहुत जरूरी है। विल्सन चाहकर भी तब तक कुछ नहीं कर सकते थे जब तक अमेरिकी लोग तैयार न हों। इस टेलीग्राम ने लोगों में ऐसा गुस्सा भरा जो शायद किसी और बात से न भरता। हमारे देश में भी हम देखते हैं कि जनता की भावनाएं कितनी मायने रखती हैं।
और हाँ, वो विडंबनाएं, जर्मनी का अमेरिकी चैनल इस्तेमाल करना और फिर जिमरमैन का खुद ही सब कबूल कर लेना, गजब।
इतिहास ऐसी दिलचस्प चीजों से भरा है।
किताब में कुछ बातें तो एकदम दिमाग में रह जाती हैं, जैसे वो कि जर्मन सरकार ने अपना सबसे बड़ा राज उसी देश के हवाले कर दिया जिसके खिलाफ साजिश कर रहे थे। क्या लापरवाही थी।
हाँ, और जिमरमैन का वो कबूलनामा, टकमैन लिखती हैं कि ये मॉडर्न डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी भूलों में से एक थी। सच बोलने के चक्कर में उन्होंने अपने देश को डुबो दिया।
और किताब का ये निचोड़ कि जहाजों के डूबने से ज्यादा इस टेलीग्राम ने अमेरिका को युद्ध में धकेला, क्योंकि इसने खतरे को अमेरिकी घर तक ला दिया था।
बिल्कुल, लोगों को लगा कि ये अब उनकी अपनी लड़ाई है। और हाँ, एडमिरल हॉल की चालाकी वाली बात भी कि सिर्फ जानकारी हासिल करना काफी नहीं, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना असली जीत है।
इस पूरी कहानी से आज के जमाने के लिए भी बहुत कुछ सीखने को है ना?
बिल्कुल। जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में ये एक चेतावनी है कि आप ये मानकर नहीं चल सकते कि आपका दुश्मन आपकी तरह ही सोचेगा। जर्मनी अमेरिका को समझ ही नहीं पाया।
सही कहा। और बिजनेस और स्ट्रेटजी में भी ये लागू होता है।
हाँ, जर्मन प्लान एक हाई रिस्क गैम्बल था जो गलत जानकारी पर आधारित था। ये सिखाता है कि कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले कितनी रिसर्च, कितना रिस्क असेसमेंट जरूरी है, और वो कन्फर्मेशन बायस से बचना कितना जरूरी है, मतलब सिर्फ वो सुनना जो हम सुनना चाहते हैं।
टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये कहानी बहुत अहम है।
हाँ, ये सिग्नल इंटेलिजेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक जासूसी के इतिहास का एक बेसिक चैप्टर है, और ये सिखाता है कि कोई भी कम्युनिकेशन 100% सिक्योर नहीं होता।
और कम्युनिकेशन के नजरिए से देखें तो टेलीग्राम पर पब्लिक का रिएक्शन, एक साफ इमोशनल मैसेज की ताकत।
बिल्कुल। और दूसरी तरफ जिमरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक डिजास्टर मैनेजमेंट का क्लासिक केस। कभी कभी सच भी नुकसान कर देता है अगर गलत तरीके से कहा जाए।
और व्यक्तिगत स्तर पर भी अहंकार, अति आत्मविश्वास, ये सब कितने खतरनाक हो सकते हैं।
हाँ, अपने फैसलों की दूरगामी असर के बारे में सोचना और थोड़ी विनम्रता रखना बहुत जरूरी है।
मेरे लिए तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि इतिहास अक्सर बहुत छोटी, बहुत नाजुक चीजों पर टिक जाता है। कोई एक गलत फैसला, किसी एक इंसान की चूक और दुनिया बदल जाती है।
सही कहा। और बारबरा टकमन की यही खूबी है कि उन्होंने इस मुश्किल कहानी को इतने रोमांचक तरीके से बताया है जैसे कोई जासूसी नॉवल हो। ये किताब न सिर्फ इतिहास का एक अहम सबक है, बल्कि आज की कनेक्टेड दुनिया में भी रणनीतिक गलतियों के नतीजों के बारे में एक चेतावनी है।
ये याद दिलाती है कि सूचना, इन्फॉर्मेशन, हमेशा से ताकतवर रही है और शायद आज और भी ज्यादा। सोचने वाली बात यह है कि आज के इस दौर में, जहां हर तरफ इन्फॉर्मेशन का शोर है, सोशल मीडिया है, 24 घंटे न्यूज है, क्या कोई एक अकेली खुफिया जानकारी या लीक आज भी वैसा ही असर डाल सकती है, या अब माहौल इतना बदल गया है? ये सवाल शायद हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं।
जरूर।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।